ಜಯಾವರ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಾರ್ಮೌಟವಂಶಿ ಆದಿ ಜೊ ಹೈ ಆಪ್ಕೋ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕಿ ಬಾತ್ ಬತಲಾಯಿ ಜಾತಿ ಹೈ ಮಜಲ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಜೋ ಕಿ ಮೇ ಕೋ ನಿರ್ಣಯ ಬಡೋ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹೈ ಆಪಣ ಉತ್ತಮ ದರ್ಜೆ ಕಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕಿ ಬಾತ್ ಸಂಸಾರ ಕೆ ಬೀಚ್ ಕೆ ವಹಾಂ ಅನೇಕ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹೈ ಔರ್ ಅಪನೆ ಅಪನೆ ಮಜಹಬ್ ಕೋ ಸಭಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬತಲಾತೆ ಹೈ ಹಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಿ ಹೋಕರ್ ಕೆ ಬಾತ್ ಕಹ ರೇ ಹಮಾರಾ ಈ ಧರ್ಮ ಸಬ್ಸೆ ಬಡ ಕರ್ಕೆ ಹೈ ತೋ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಧರ್ಮ ವಾಲೆ ಕಹೆಂಗೇ ಕಿ ನಹೀ ಹಮಾರಾ ಕುರಾನ್ ಶರೀಫ್ ಜೊ ಹೈ ಹಜರತ್ ಮಹಮದ್ ಕಾ ಜೊ ಬತಲಾ ಧರ್ಮ ಹೈ ವೋ ಈಶ್ವರ್ ಸೇ ಬಡ ಕರ್ಕೆ ಹೈ ಈಸಾಯಿ ಲೋಗ್ ಯೇ ಕಹೆಂಗೇ ಈಸಾ ಕಾ ಜೊ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೈ ಜೊ ಹಮಾರಾ ಬೈಬಲ್ ಜೊ ಗ್ರಂಥ ಹೈ ವೋ ಈಶ್ವರ್ ಸೇ ಬಡ ಕರ್ಕೆ ಹೈ ಔರ್ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಕೋ ಜೊ ಮಾನನೆ ವಾಲೆ ಜೊ ಹೈ ವೇ ಕಹೆಂಗೇ ಕಿ ಬೌದ್ಧ ಮತ ಜೊ ಹೈ ವೋ ಸಬ್ಸೆ ಬಡ ಕರ್ಕೆ ಹೈ ಔರ್ ಧಮ್ಮಪದ ಜೊ ಗ್ರಂಥ ಹೈ ಬುದ್ಧ ಕಾ ವೋ ಬಡಾ ಅಚ್ಛಾ ಸಬ್ಸೆ ಬಡ ಕರ್ಕೆ ಹೈ ಹಮ ಕಹೆಂಗೇ ಕಿ ಹಮಾರಾ ಜೊ ವೇದ ಹೈ ವೋ ಸಬ್ಸೆ ಬಡ ಕರ್ಕೆ ಹೈ ಔರ್ ಸ್ಮೃತಿಯಾ ಸ್ಮೃತಿಯೋ ಕೆ ಬೀಚ ಗೀತಾ ವೋ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಸ್ಮೃತಿ ಹೈ ಋಷಿಯೋ ಕಿ ಸ್ಮೃತಿ ಹೈ ವಾಸ್ತೆ ಗೀತಾ ಔರ್ ವೇದ ಯೇ ಸಬ್ಸೆ ಬಡ ಕರ್ಕೆ ಹೈ ಔರ್ ಹಮಾರೇ ಸಮಜೋ ಕಿ ಹಮಾರೇ ಋಷಿ ಮಹರ್ಷಿ ಜೊ ಲೋಗ್ ಹೋಯೇ ಹೈ ವೇ ಆಪಣೆ ಉನ್ಕಾ ಮತ ಸಬ್ಸೆ ಬಡ ಕರ್ಕೆ ಹೈ ಜೊ ಸಮಜೋ ವೈದಿಕ ಜೊ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ವೇದೋಕ್ತ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಉಕ್ತ ಜೊ ಧರ್ಮ ಹೈ ವೋ ಸಬ್ಸೆ ಬಡ ಕರ್ ವಿಚಾರ ಕರ್ನಾ ಕಿ ಫೇರ್ ಏ ಪ್ರಕಾರ ಝಗಡಾ ತೋ ತಯ ನೀ ಆಪಣಾ ವೋ ಕಹ ದಿಯಾ ಹಮಾರಾ ಬಡ ಕರ್ ವೋ ಕಹ ದಿಯಾ ಹಮಾರಾ ಬಡ ಕರ್ಕೆ ತೋ ಪ್ರಥಮ ತೋ ಆಪ್ಕೋ ಯೇ ವಿಚಾರ ಕರ್ನಾ ಚಾಹಿಯೇ ಕಿ ಸಂಸಾರ ಕೆ ಬೀಚ್ ಕೆ ಮಾ ಜಿಸ್ಕೋ ಕರೋಡೋ ಆದಮಿ ಮಾನತೆ ಹೋ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಿ ಕಿತನಿ ಕೌಮ್ ಹೈ ತೋ ಮನೆ ಚಾರ್ ಕೌಮ್ ಆಪ್ಕೋ ಬತಲಾ ಯೇ ಚಾರ್ ಹೀ ಹೈ ಔರ್ ಕರೋಡೋ ಆದಮಿ ಉಸೆ ಧರ್ಮ ಮಾನನೆ ವಾಲೆ ಔರ್ ಪಾಂಚವಾ ಕೋಈ ನಹೀ ಹೈ ದುನಿಯಾ ಹೈ ವೋ ಲಾಖೋ ಕಿ ಸಂಖ್ಯಾ ಮೇ ಹೈ ವೋ ತೋ ಫಿರ್ ಐಸಾ ಜೋ ಸಮಝೋ ಕಿ ಥೋಡಿ ಸಂಖ್ಯಾ ಮೇ ಮಾನನೆ ವಾಲೆ ತೋ ಔರ್ ಭೀ ಕಹೀ ಹೈ ಸಮಝೋ ಕಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ ಹೈ ಯಾ ಸಿಖ ಮತ ಹೈ ಯಾ ಸಮಝೋ ಕಿ ಫಾರ್ಸಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೈ ಯೂ ದಿಲೀ ತೋ ಇಸ್ ಸೇ ಬಹುತ್ ಏಕ ಪ್ರಕಾರ ಸನಿ ಗಾಯ ಪೋಪ್ ಕೋ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೈ ಕಿಂತು ಏಕ ಕರೋಡೋ ಕಿ ಸಂಖ್ಯಾ ಮೇ ಮಾನನ ವಾಲೆ ಜೊ ಧರ್ಮಾನುಯಾಯಿ ಉನ್ಕಿ ಚಾರಿ ಶ್ರೇಣಿ ಹೈ ವರ್ತಮಾನ ಮೇ ತೋ ಇಸ್ ವಿಷಯ ಮೇ ಪ್ರಥಮ ತೋ ಸಬ್ಸೆ ಯೇ ವಿಚಾರ ಕಿಯಾ ಜಾವೆ ಕಿ ಸಂಸಾರ ಕೆ ಬೀಚ್ ಕೆ ವಹಾಂ ये धर्म की चर्चा आरंभ में कहां से उठी ये विचार करना चाहिए तो ये विचार करने से कि ये जो इस्लाम धर्म जो है हजरत मोहम्मद जो है कुरान शरीफ जो है इसको 1400 वर्ष हुए हैं 1400 वर्ष के पूर्व में तो समझो कि अपने देश के मां कोई कुरान थी और न कोई मौलवी हुई तो जो कुछ एक प्रकार से 1400 वर्ष का ही है अब दूसरा विचार किया जाए कि भी ईसा का मत कितनों वर्षों से है तो 1954 की साल चलते ईसा उसके पहले ईसा दुनिया में नहीं था ईसा ही नहीं था तो ईसाई धर्म भी नहीं था न बाबरी नहीं था तो इसके लिए हम हिसाब लगाते हैं तो उसे 2000 वर्ष के पहले पहले ही है और इससे आगे नहीं बढ़ सकते तीसरी बात यह आई कि गौतम बुद्ध जो है उसका जो सिद्धांत है वो कहता है कि गौतम बुद्ध को 3000 वर्ष हुए तो 3000 वर्ष के पहला न गौतम बुद्ध ही था न उसका बोध धर्मी था तो ये सारा मामला 3000 वर्ष के इधर इधर का हुआ तो इसके पहले संसार के बीच क्यों धर्म आता वो वैदिक सनातन धर्म चले गया और ये जो वैदिक सनातन जो धर्म है उसको हमारा शास्त्र अनादि बतलाता है कि ये सनातनी है और ब्रह्मा के मुख से वेद प्रकट हुए वहां से ही चलू है, ब्रह्मा की उत्पत्ति सृष्टि की आदि में। तो इस वास्ते हमारे शास्त्रों के सिद्धांत के अनुसार तो करोड़ों वर्ष हो गए, तो अनादि होने के कारण किसी इसकी प्रधानता है। फिर भी हम सबका आदर करते हैं, क्योंकि यदि किसी ने भी एक प्रकार से धर्म शब्द को ग्रहण किया है तो हमारे शास्त्रों से किया ना, इस न्याय से थी उनमें भी जो कुछ धर्म विषय की व्याख्या है तो एक प्रकार से हमारे ही अनुयायी हुए, हमारे धर्म को लेकर ही सब चले संसार के बीच में, पहला कोई धर्म नाम की कोई चीज नहीं थी। और मनु ने यह भी बताया कि सारी दुनिया के लोग जो है समझो कि धर्म की शिक्षा भारत से लिया करते थे, ये मनु का भी वचन ऐसे मिला है। और ये भी मिला है कि इस आदि है सो यहाँ ही एक प्रकार से आए थे और यहाँ से ही वे धर्म की शिक्षा लेकर के गई गए। और गौतम बुद्ध तो यहाँ का सनातन धर्मी था ही, एक प्रकार से उसका पिता सनातन धर्मी था, तो वो तो हिंदू ही था। तो इन सब बातों को मान लेने से ये मालूम होता है कि भी आदि जो है सनातन है, ये है अपना जो धर्म। अब दूसरी बात की ये चर्चा चलती है कि भी अपने धर्म के मां भी बहुत से फिरके हैं, अलग अलग अपने संप्रदाय हैं, कि या गौड़िया संप्रदाय या एक प्रकार से रामानुज संप्रदाय या शंकर संप्रदाय या शिव संप्रदाय या ब्रह्म संप्रदाय या एक प्रकार से रामानंद संप्रदाय बल्ब संप्रदाय तो निमार्क संप्रदाय समझो कि अनेक भेद माने गया। और उसके बीच के वहां वेद को मानने वाले आर्य समाज भी और अनेक एक प्रकार से उनके फिरके हुए। तो इस वास्ते एक रूप से वास्तव के बीच के वहां सच्ची बात कौन सी है? यदि आप ये कहो कि भी चार जो बड़ी संप्रदाय मानेगी कि हिंदू और इस्लाम और ईसाई और बौद्ध, और फिर हिंदू के बीच के वहां अनेक नाना मानेंगे, ऐसे मुसलमानों की शिया सुन्नी भेद है, ऐसे समझो कि बौद्ध में भी भेद है, तो ये सब एक प्रकार से हम इसके सिद्धांत को ठीक थोड़ी बार के वास्ते मान लो कि हम हिंदू धर्म के मानने वाले हैं और हिंदू संप्रदाय कोई मानते हैं, तो अब हिंदू संप्रदाय में भी कौन सी ठीक है? तो उसमें भी मतभेद है। तो अब एक प्रकार से थी हम किसकी बात को ठीक माने? महाभारत के वन पर्व के मां यक्ष ने राजा युधिष्ठिर से प्रश्न किया है कि असली जो मार्ग है परमात्मा की प्राप्ति का जो मार्ग है वो सो इसके भी समाप्त बतलाओ। उन्होंने कहा कि भी मैं क्या कहूं कि एक प्रकार से थी आपने श्रुति है जिसकी भी एक प्रकार से उस मार्ग के विषय में परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग के विषय में भिन्न भिन्न कहती है, स्मृतियां भी भिन्न भिन्न कहती है, और मुनि भी एक नहीं बहुत है, तो मैं किस मुनि का नाम लेके कहूं? तो जिस समय में जो महान पुरुष जिस मार्ग से चलता है वही मार्ग मार्ग है। तो अब ये कठिनता आएगी कि महापुरुष हम किसको माने? उनके अनुयायी कहते हैं कि भी ये महापुरुष हुआ, गांधी जी के मानने वाले कहते हैं कि गांधी जी महापुरुष हुए, आर्य समाज जी कहते हैं कि दयानंद जी महापुरुष हुए, शंकर स्वामी के अनुयायी कहते हैं कि शंकराचार्य शंकर का ही अवतार है। तो ये तो सब एक प्रकार से अपने अपने समझो कि आचार्य को सबसे श्रेष्ठ बतलाते हैं। तो अब इस के विषय में आपने निर्णय सुनना चाहिए। निरपेक्ष भाव से जी हम लोग जो विचार करें तो हमारे जो श्रुति स्मृति के मानने वाले जितने एक प्रकार से आचार्य हुए हैं उन सब का मत ही सभी का मत ठीक हमको मानना चाहिए। और जब एक प्रकार से हमको मीमांसा करनी है तो ऐसी परिस्थिति के वहां ईसाई मत के जो मानने वाले हैं और इस्लाम धर्म के जो मानने वाले हैं और बौद्ध धर्म को जो मानने वाले उनको भी आदर देना चाहिए। तो स्थिति ये बात सिद्ध हो जाती है कि भी सभी धर्मावलंबी जो है धर्म के नाम से चलने वाले सभी श्रेष्ठ है और सबका मत ही मानने के योग्य है। तो बोले कि इससे तो कोई निर्णय नहीं हुआ कि सभी का एक प्रकार से ठीक है तो फिर प्रश्न का उत्तर ठीक है तो नहीं बैठा। और सभी एक प्रकार से सत्य होते नहीं, सत्य तो एक ही बात होती है। जब एक के विरुद्ध में बहुत से खड़े हैं तो बहुत से मिलकर एक को विरुद्ध कर देते हैं और वे दूसरे बहुत से जैसे सुन लो कि अनेक मत मतांतर हुए कि 20 प्रकार के मत मतांतर हुए। एक अपने हिंदू धर्म के मां भी अनेक फिरके हो गए और हिंदू के स्वासम जो ईसाई और आपने बौद्ध और इस्लाम धर्म के मानने वाले मुसलमान भाई लोग यहाँ अनेक हो जाते हैं। और हम किसी के धर्म की निंदा करेंगे वो खराब है तो वो हमारे धर्म की निंदा करेगा तुम्हारा खराब है। वो कहता है कि भाई हमारा शास्त्र में जो वो कहता हमारा शास्त्र देखो, वो कहता हमारे आचार्य श्रेष्ठ, वो कहता हमारा आचार्य श्रेष्ठ। तो वास्तव के बीच के मां एक प्रकार से हम इसका निर्णय चाहते हैं। तो तर्क के ऊपर रख करके जब हम विचार करते हैं तो तर्क से किसी भी धर्म की सिद्धि नहीं होती। और हमारा शास्त्र भी कहता है कि परमात्मा के स्वरूप का निर्णय और धर्म का निर्णय तर्क से नहीं हो सकता। मुसलमान लोग तो इस विषय में इतना जोर देते हैं कि कोई एक प्रकार से थी कुरान शरीफ की जो कानून है और जो समझो कि खुदा की जो आज्ञा जो आकाश उतरती है और जिसको मोहम्मद ने जो प्रचार किया है उस विषय के वहां कोई तर्क करे तो एक प्रकार से थी उसको काफिर समझे। इसमें तर्क करनी नहीं थी तो श्रद्धा की दृष्टि से थी यह बात ठीक है। तो तर्क की कसौटी पर जब हम कसेंगे तो कोई सा भी मत जो है सो कायम नहीं रहे। और ये जो हिंदू धर्म के अंतर्गत जो बहुत से मत मतांतर है वे जो सुन जो बहुत है उनमें भी कोई कायम नहीं रहेगा। जब तर्क के ऊपर इसका विवाद विवाद बाद विवाद करेंगे तो और श्रद्धा की दृष्टि से थी सभी कायम होंगे। तो श्रद्धा की दृष्टि से थी जितने एक प्रकार से धर्म के मानने वाले हैं उनके सभी कायम रहेंगे। तो आचार्य पुरुषों के द्वारा जो चलाया हुआ जो मत है वो एक प्रकार से इस न्याय से ठीक है कि उसके कहे अनुसार कोई चलता है तो आगे जाकर के उसका कल्याण हो जाता है। इस न्याय से ठीक वो तर्क की दृष्टि से विचार की दृष्टि से देखते हैं तो किसी का भी सिद्धांत किसी का भी मत ठीक नहीं है। क्यों कि एक आदमी कहता है कि भी ये स्वामी रामानुज ठीक है तो उसके विषय में और 19 समझो कि दार्शनिक खड़े हैं बोले नहीं ठीक नहीं। गौतम का मत अलग ही है, कणाद का अलग ही है और वैशिष्ट शास्त्र का दर्शन शास्त्र का सिद्धांत दूसरा ही है और न्याय का दूसरा ही है। ऐसे ही समझो कि एक प्रकार से न्याय के जो करता है वो गौतम है और वैशी से करता है वो कणाद। अरे योग शास्त्र का करता महर्षि पतंजलि है और पूर्वमीमांसा का जैमिनी और उत्तर मीमांसा के रचिता वेदव्यास है और कपिल देव जी है संकीर्तन। इस वास्ते अलग अलग शास्त्रकार जो है दर्शन शास्त्र के रचिता अलग अलग है और उनका मत एक से एक मिलता नहीं भिन्न है। इसी प्रकार से समझो कि वर्तमान के बीच के वहां जो आचार्य हुए जिनका नाम मैं बड़ा बतला चुका कि समझो कि अद्वैतवाद जो है और द्वैतवाद जो है वशिष्ठाद्वैत जो है इस प्रकार के सब अलग अलग आचार्य हुए। जैसे अद्वैतवाद जो है स्वामी शंकराचार्य जी का और वशिष्ठाद्वैत जो है रामानुज जी का और गौड़ीय संप्रदाय का जो है द्वैतवाद है। इस तरह से सबका एक प्रकार से अलग अलग अपने मत है और एक से एक मिलता नहीं। और फिर जो हमारे समझो कि धर्म से जो दूसरे धर्म वाले हैं मुसलमान और ईसाई इत्यादि उनका तो और भी अधिक डिफरेंस बढ़ जाता है। तो ये विचार करना चाहिए कि यदि एक कोई मत वाला कहता है कि नहीं ये गौड़ीय संप्रदाय का ठीक है तो गुनीस आदमी लाख लिए खड़े हैं कि नहीं ये तुम्हारा दोष ये दोष ये दोष। यदि दयानंद जी के मत को ठीक मानने के वास्ते तैयार होते हैं तो दूसरे गुनीस आदमी खड़े इसमें ये दोष है ये दोष है। स्वामी शंकराचार्य जी के मत को मानने के लिए खड़े हैं तो उसके वास्ते दूसरे 19 खड़े हैं। तो 19 आदमी एक प्रकार से उसका विरोध करने से एक जो है वो तर्क है एक प्रकार से नापास हो जाता है तो सभी नापास हो जाते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार तर्क की कसौटी पर यदि कैसा जा रहा है तो कोई भी पेश नहीं पाता। किसी का भी मत जो है तो एक प्रकार से तर्क सिद्ध नहीं होता। क्यों नहीं सिद्ध होता? ये तर्क जो है सो अपने बुद्धि की वृत्ति और बुद्धि का कार्य है और परमात्मा का जो स्वरूप है वो बुद्धि से परे की चीज है। इस वास्ते वो सिद्धांत है सो तर्क के द्वारा सिद्ध होने का नहीं है और बुद्धि के द्वारा इस सब माने हुए मत है। तो इस कारण से थी परमात्मा का जो स्वरूप है और परमात्मा का जो मार्ग है वो अतर्क है वहां तर्क की गति नहीं। तो सभी यदि एक प्रकार से थी अपने नापास हो जाते हैं तो फिर हम किसका आधार लेंगे? बोलो दूसरी दृष्टि से श्रद्धा की दृष्टि से थी सभी ठीक है। तो सभी ठीक है तो ठीक तो एक ही होना चाहिए। सभी ठीक कैसे कि मार्ग अलग अलग है और उनको सबको फल एक। सुन गीता के मां भी भगवान जो है दो मत बदलाते हैं फिर एक का दो भेद करते और उसका फल एक ही बदलाते। तो बदलाते हैं शुरू में कि लोकेश में द्विधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मयान गए ज्ञान योगी न संख्या नाम कर्म योगी न योगी नाम। हेतु ने संसार के बीच के वहां दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा कही गई ज्ञानियों को ज्ञान योग करके और कर्मियों को कर्म योग करके। कहां कही गई? ये श्लोक तीसरे अध्याय का तो दूसरे अध्याय के वहां भगवान कह चुके। अभी जिसकी बात कर रहे थे कि दूसरे अध्याय के 39 के श्लोक में ये साते भीता संख्य बुद्धि योगे तुम सुनू ये संघ के विषय भी तुम्हारे कही और इस बुद्धि को तू योग के विषय में सुन। और ये दो कहकर के फिर उसके आगे इनके और भी भेद कर दिए और अवान्तर भेद हो गए। अवान्तर भेद ये कभी कितने योगी लोग हैं जिनको तो एक प्रकार से परमात्मा ब्रह्मवीर इस प्रकार से सब कुछ ऊपर में इस प्रकार की दृष्टि उपासते हैं और कितने जो है तो देव यज्ञ करते हैं कितने द्रव्य करते हैं कितने तप यज्ञ कितने योग यज्ञ कितने स्वाध्याय यज्ञ कितने प्राणायाम राम रूप यज्ञ अरे सभी एक प्रकार से अपने करने वाले यज्ञ करने वाले कलमश जो पाप उससे रहित है और सभी असो सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते। इतना भेद करके उनका सबका फल है सो एक ही बदला दिया कि सभी सनातन ब्रह्म को प्राप्त होती। एक शिष्टा मृत भूंजो यांति ब्रह्म सनातनम, एक से बचे हुए अन्न के खाने वाले सभी सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते। स्वामी और जितने जो स्वामी हुए हैं वे भी एक प्रकार से उसका फल वो बदलाते। महर्षि जो पतंजलि हुई वे एक प्रकार से थी योगी है, योग की सिद्धि जो है उसका अंतिम परिणाम है योगश्चित वृत्ति निरोध है। चित्त की वृत्तियों के निरोध का नाम योग है और चित्त की वृत्तियों का जो निरोध रूप जो योग है उस निरोध रूप योग की प्राप्ति के लिए उन्होंने भी साधन बहुत से बतला दिए। अभ्यास वैराग्य हम निरोध है, अभ्यास और वैराग्य चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। बोले और उपाय? बोले हाँ और भी है। और क्या? ईश्वर पर निधान हुआ, ईश्वर पर निधान से दी। बोले और भी? बोले और भी है, प्रसंग धारणा ध्यान हुआ, प्राणस्य प्राणों को बाहर में छोड़ना रोक देना, ये प्राणायाम का उपाय जो कहते हैं। तो उन्होंने भी फिर एक समझो कि चित्त वृत्ति निरोध रूप जो योग है उसकी प्राप्ति के लिए अनेक साधन बतला दिए कि उससे योग की प्राप्ति हो सकती है। तो इस वास्ते उनका जो योग है वो अपने जीव का कल्याण करने वाला है। या गीता के माँ परमात्मा की प्राप्ति के बहुत से साधन बतला दिए। साफ साफ भगवान कहते हैं कि भी एक प्रकार से ध्यान आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानं आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। ध्यान के द्वारा कोई एक पुरुष उस परमात्मा को अपनी आत्मा के मां बुद्धि से अनुभव करते हैं ध्यान द्वारा, और कितने ऐसे सांख्य योग के ज्ञान योग के द्वारा हम उस परमात्मा के स्वरूप का साक्षात करते हैं, और कितनी है तो कर्मयोग के द्वारा उस परमात्मा के स्वरूप का साक्षात करते हैं। तो उपाय तो गीता में भी बहुत प्रकार के उपाय बन रहे, फल उनका सबका एक साधन का इतना फर्क है कि एक जाता है समझो कि पूर्व तो एक जाता पश्चिम। एक कहता है कि समझो कि जीव और ब्रह्म एक ही है, दूसरा कहता है कि नहीं जीव और ब्रह्म अलग अलग है। एक कहता है समझो कि आपने एक, दूसरा कहता है कि नहीं दो, तीसरा कहता है कि नहीं तीन। इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है, अंतिम परिणाम सबका एक ही होगा। बोलो कैसे? एक पूर्वी पूर्व जाएगा, एक उत्तरी उत्तर जाएगा, और एक दक्षिणी दक्षिण, एक पश्चिमी पश्चिम जाएगा। उसमें कोई आपत्ति नहीं है, फल उसका सबका एक ही हो जाएगा। जैसे कोई अमेरिका को समझो कनाडा में जाता है तो एक तो जाता है भूमध्य सागर होकर के, तो वो जो भूमध्य सागर होकर के जाता है तो उसके लिए यूरोप को दाएं तरफ में रख करके और अफ्रीका को बाएं तरफ में रख करके अगर भूमध्य सागर होकर चला जाता है तो वो कनाडा पहुंच जाता है। वो जाता है एकदम पश्चिमी पश्चिम, और दूसरा एक जाता है पूर्वी पूर्व, ऑस्ट्रेलिया को दाएं तरफ रखता है और जापान आदि को बाएं तरफ रखता है, और वो पूर्वी पूर्व चला जाता है, वही कनाडा पहुंच जाता है। तो प्रत्यक्ष के मां आप देख लो कि उनका जाने का मार्ग एकदम अपने अलग अलग है, और दोनों का फर्क। तो इसी प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग अलग अलग है और वो फल तो एक ही है। उस परमात्मा के नाम भी बहुत से हैं और उन्हें के स्वरूप के विषय में भी सबका मतभेद है। नाम के विषय में कोई तो कहता है राम, कोई कृष्ण, कोई विष्णु, कोई नारायण, कोई हरि, कोई ओम, और कोई कहता है अल्लाह, कोई खुदा, कोई कहता है गौर, कोई कुछ, कोई कुछ। तो एक प्रकार से थी ये समझना चाहिए कि जितना जो परमात्मा को लक्ष्य करके नाम बतलाए जाते हैं वो एक शख्स के नाम है और वो ही परमात्मा। अपने अपनी भाषा में उनका भिन्न भिन्न नाम कहते हैं किंतु वस्तु एक ही है। जैसे जड़ है तो कोई जड़ को अब कहता है, कोई नीर कहता है, और कोई पानी कहता है, और कोई वाटर कह देता है, तो इन सब शब्दों को अर्थ एक ही। तो बोले ठीक है, नाम के विषय में आपके जी बात ठीक है। इसी प्रकार से मुक्ति के भी बहुत से नाम, तो कोई तो कहता है परम पद की प्राप्ति, कोई कहता है साथ में आसमान की प्राप्ति, कोई कहता है कि समझो कि सब शिला की प्राप्ति, कोई कहता है सातवें लोक की, सतलोक की प्राप्ति, ब्रह्म लोक की प्राप्ति, और कोई कहता है समझो नित्य धाम की प्राप्ति, कोई कहता है ब्रह्म की प्राप्ति, कोई कहता है परमात्मा की प्राप्ति, कोई कहता है निर्वाण पद की प्राप्ति। तो उनके बहुत से नाम तो संसार में विख्यात है। तो ये सब ही नाम मुक्ति के है, यानी जिसको एक प्रकार से हम सबसे सब साधनों का फल कहते हैं वही चीज प्राप्ति। स्वरूप के विषय में कोई तो कहता है कि अल्लाह खुदा निराकार है, अरे समाधि कहते हैं कि यह निराकार है, और कोई कहता है कि निराकार होकर के भी निर्गुण है, कोई कहता है कि सगुण है, कोई कहता है कि साकार है। तो सभी परमात्मा के स्वरूप होने के नाते से सभी का कहना ठीक है। कोई कहता है कि भगवान स्त्रीलिंग है, कोई कहता है नपुंसक लिंग है, कोई कहता है पुलिंग है, भगवान तीनों ही लिंगों के बीच की हमारे विश्वास है, सबका ही कहना ठीक है। और कोई कहता है अनेक प्रकार से साकार निराकार सगुण निर्गुण व्यक्त अव्यक्त, तो भगवान व्यक्त अव्यक्त साकार निराकार सगुण निर्गुण सभी रूप में है, इसलिए सबका ही कहना ठीक है। तो ये सब भगवान के ही स्वरूप हैं। ये सब किस प्रकार से थी है थोड़ा और भी गंभीरता से विचार करना चाहिए। एक थोड़ा समझो कि दृष्टांत देख बताया जाता है कि एक हाथी था और उस हाथी को एक प्रकार से अंधेरे के बीच के मां आंधे आदमियों ने उसको स्पर्श किया। तो एक ने तो हाथी की सूंड पकड़ी और एक ने हाथी की पूंछ